लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया सह जिम्मेदारी के संकेत रूप में सभी तरीकों से धर्म सभा की जीवन शैली को बनाए रखे तथा पुरोहितों, धर्म बहनों और आम लोगों के बीच भागीदारी, एकता और मिशन को बढ़ावा दे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर पवित्र आत्मा को एकता का सूत्रधार बतलाया। उन्होंने बुधवारीय आम दर्शन के अवसर पर वैटिकन के संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel nostro itinerario di catechesi sullo Spirito Santo e la Chiesa, oggi facciamo riferimento al libro degli Atti degli Apostoli.
Priye bhaiyo evam behno, suprabhat. Pavitra Atma aur Kalisya par apni dham shiksha mala ke antargat aaj hum prerit charit ki pustika par chintan karenge. पेंतेकोस्त के समय पवित्र आत्मा का आगमन हमारे लिए कुछ तैयारी भरी निशानियों का जिक्र करता है, जहां हम वायु की खड़खड़ाहट और आग को जीव के रूप में पाते हैं, लेकिन अंत में इसका वर्णन हम इस रूप में पाते हैं, वे सभी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। संत लूकस, जिन्होंने प्रेरित चरित की पुस्तक लिखी, इस बात पर जोर देते हुए यह सुनिश्चित करते हैं कि पवित्र आत्मा वे हैं जो हममें वैश्विकता और कलिस्य की एकता से सुदृढ़ कराते हैं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का शीघ्र प्रभाव हमारे लिए प्रेरितों में विभिन्न भाषाओं को बोले जाने में परिलक्षित होता है। वे अंतिम व्यारी की कोठरी से बाहर निकलते और भीड़ को यीशु ख्रिस्त के बारे में बतलाने लगते हैं। ऐसा करने के द्वारा लूकस वैश्विक कलिस्य की प्रेरिताई पर जोर देना चाहते हैं, जो हम सबों के बीच एकता की बात बयां करती है। हम पवित्र आत्मा को दो रूपों में एकता हेतु कार्य करते पाते हैं। पहला, वे कलिस्य को अपने से बाहर ले चलते, जिससे वह और अधिक लोगों का स्वागत करते हुए उन्हें जमा कर सके, तो वहीं दूसरी ओर वे उन्हें वैश्विक एकता में सुसंगठित करते हैं। वे उसे दुनिया में फैलाने और एकता में बने रहना सिखलाते हैं। वैश्विकता और एकता, ये कलिस्य के रहस्य हैं, संत पापा ने कहा। उन्होंने कहा, हम इस पहले कार्य वैश्विकता को प्रेरित चरित के 10वें अध्याय कॉर्नेलियस के मन फिराव की घटना में पाते हैं। पेंतेकोस्त के दिन प्रेरितों ने यहूदियों और मूसा के नियमानुसार चलने वाले अनुयायियों के लिए ख्रिस्त को घोषित किया था। पहले पेंतेकोस्त की भांति ही शतपति कॉर्नेलियस के निवास में हम दूसरा पेंतेकोस्त को पाते हैं, जो प्रेरितों को अपने क्षितिज का विस्तार करने और यहूदियों और गैर ख्रिस्तियों के बीच की अड़चनों को दूर करने को अग्रसर करता है। इस जातीय विस्तार में हम भौगोलिक विस्तार को संलग्न पाते हैं। पौलुस, जैसे कि हम प्रेरित चरित में सदैव पढ़ते हैं, वे एशिया माइनर के नए प्रांत में सुसमाचार प्रचार करना चाहते थे, लेकिन हम इसे लिखित रूप में ऐसा पाते हैं कि इसके लिए पवित्र आत्मा उन्हें मना करते हैं। वह बेथुनिया में प्रवेश करने की चाह रखते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देते हैं। हमें आश्चर्यजनक रूप में इस मनाही के कारणों का तुरंत पता चलता है। वहीं दूसरी रात को एक सपने में प्रेरित को यह बतलाया जाता है कि उन्हें मकेदोनिया जाना है। इस भांति सुसमाचार ने एशिया को छोड़कर यूरोप में प्रवेश किया। संत पापा ने कहा,
Secondo movimento dello spirito, quello che crea l'unità, lo vediamo nell'atto del capitolo 15 degli Atti degli Apostoli.
पवित्र आत्मा का दूसरा कार्य जिन्हें हम एकता का निर्माण करता हुआ पाते हैं, जो हमारे लिए प्रेरित चरित्र के अध्याय 15 में देखने को मिलता है, जहां हम यरूशलेम की धर्म सभा की गतिविधियों को पाते हैं। यहां समस्या यह है कि कैसे सुनिश्चित किया जाए कि प्राप्त सार्वभौमिकता कलीसिया की एकता से समझौता न करे। पवित्र आत्मा एकता की स्थापना अचानक चमत्कारिक और निर्णायक कार्य के रूप में नहीं करते हैं, जैसे कि उन्होंने पेंतेकोस्त के दिन में किया। वे ऐसा बहुत से परिस्थितियों में भी करते हैं, विवेकपूर्ण ढंग से मानवीय समय और विभिन्नताओं का सम्मान के आधार पर लोगों और संस्थानों से परे जाते हुए प्रार्थना और प्रतिकार की स्थिति में भी। वर्तमान समय में हम इसे सिनोडल स्वरूप कह सकते हैं। वास्तव में यरूशलेम की धर्म सभा में यही होता है, जिसे हम मूसा की संहिता के अनिवार्य अनुपालन के संदर्भ में पाते हैं। संत अगुस्टिन पवित्र आत्मा के द्वारा स्थापित की गई एकता को एक निशानी द्वारा प्रस्तुत करते हैं, जो प्रसिद्ध बन गई है। जैसे कि आत्मा एक व्यक्ति के शरीर का अंग है, वैसे ही पवित्र आत्मा यीशु के शरीर के अंग हैं, जो कि कलीसिया है। यह निशानी हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझने में मदद करती है। पवित्र आत्मा कलीसिया में एकता बाहर से स्थापित नहीं करते हैं, वे हमें एकता में बने रहने हेतु अपने को आज्ञा देने तक सीमित नहीं रखते हैं। वे स्वयं एकता के आधार हैं। ये वे हैं जो हमें एकता में स्थापित करते हैं। संत पापा ने कहा, हमेशा की तरह हम एक विचार से अंत करेंगे जो हमें कलीसिया एक समुदाय स्वरूप सभों को अपने में समाहित करता है।
L'unità della Chiesa è l'unità tra persone e non si realizza a tavolino.
कलीसिया की एकता लोगों के बीच की एकता है और यह चित्रकारिता के पट पर स्थापित नहीं होती, बल्कि हमारे जीवन में होती है। हम इसे अपने जीवन में अनुभव करते हैं। हम सभी एकता की कामना करते हैं। हम हृदय की गहराई से इसकी कामना करते हैं, फिर भी इसे प्राप्त करना हमारे लिए कठिन होता है, यहाँ तक कि वैवाहिक जीवन और परिवार में भी। एकता और एक मत अपने में सबसे कठिन चीजों में से एक है, जिसे बनाए रखना और भी कठिन लगता है। संत पापा ने कहा, सभी कोई एकता की चाह रखते हैं, लेकिन यह हमारे लिए कठिन होता है, क्योंकि हर कोई अपनी इच्छा के अनुरूप दूसरे व्यक्ति के विचारों की चिंता किए बिना कि वह क्या सोच रहा है, ऐसा करने की सोचता है। इस भांति एकता हमारे लिए और भी मायावी हो जाती है। पेंतेकोस्त की एकता जो पवित्र आत्मा से आती है, अपने में तब प्राप्त की जाती है जब कोई अपने को नहीं बल्कि ईश्वर को केंद्र में रखता है। ख्रिस्तीय एकता का निर्माण इस भांति होता है, जब हम दूसरों को अपनी ओर आने की प्रतीक्षा करने के बदले एक साथ मिलकर यीशु की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए हम सब मिलकर पवित्र आत्मा से निवेदन करें कि वे हमें अपनी एकता और शांति का साधन बनाएं। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Nomen Domini benedictum.
Et omnumque tusque in seculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, मुझ में तेरा आशीर्वाद। शीश नवाओ याद करो, जीवन का मेरे प्रभु तू गुरु। सृष्टि करता जीवन दाता, प्यार से मुझ में प्राण पोका। सृष्टि करता जीवन दाता, प्यार से मुझ में प्राण पोका। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, मुझ में तेरा आशीर्वाद। शीश नवाओ याद करो, जीवन का मेरे प्रभु तू गुरु। गर्भ में सृजन मेरा था, अनोखी कृति तेरी मैं बना था। माँ के गर्भ में सृजन मेरा था, अनोखी कृति तेरी मैं बना था। हृदय मेरा आज भरा भरा है, मधुर मीठा साज बना है। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, मुझ में तेरा आशीर्वाद।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। मरम्मत कार्य के कारण 8 महीने तक बंद रहने के बाद संत पेतुस महाकीर्तन घर की मुख्य वेदी का अनावरण 27 अक्टूबर को संत पापा फ्रांसिस पौत्र मिस्सा के साथ करेंगे। उसी दिन धम्म अध्यक्ष धम्म सभा का समापन भी होगा। 27 अक्टूबर वैटिकन में एक महत्वपूर्ण दिन होगा। संत पेतुस महाकीर्तन घर में मुख्य वेदी पर बने बल्दाकिनों या मंडप के मरम्मत का काम और धम्म सभा दोनों समाप्त हो जाएंगे। महाकीर्तन घर के महापुरोहित कार्डिनल मौरो गंबेत्ती ने घोषणा की कि पोप फ्रांसिस क्रिस्त्याग का अनुष्ठान करेंगे और नए सिरे से बनाए गए बल्दाकिनों का आधिकारिक रूप से अनावरण करेंगे। कार्डिनल ने कहा, यह कई कारण से एक महत्वपूर्ण दिन है। 27 अक्टूबर को धम्म सभा का समापन होगा और संत पापा समापन यूखारिस्त समारोह का अनुष्ठान करेंगे। हालांकि 27 अक्टूबर शांति की तारीख भी है, क्योंकि यह 1986 में असीसी में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय द्वारा वांछित अंतर्धार्मिक बैठक की भी याद दिलाता है। उन्होंने बतलाया कि संत पापा फ्रांसिस मंडप की प्रगति के काम को देख चुके हैं और उसकी खूब प्रशंसा भी की। बल्दाकिनों को जान लोरेंसो बेर्निने ने 1624 और 1635 के बीच पोप अर्बन 8वें के लिए डिजाइन किया था। यह संत पेतुस महाकीर्तन घर में एक महत्वपूर्ण संरचना है, क्योंकि यह पहले पोप की कब्र के ऊपर स्थित है। लगभग 29 मीटर लंबे बल्दाकिनों की मरम्मत पिछली बार 1758 ईस्वी में हुई थी। द फैब्रिक ऑफ सेंट पीटर ने इस काम को एक चुनौतीपूर्ण और आवश्यक बहाली के रूप में वर्णित किया है, खासकर 2025 की जयंती के पहले। कलीसिया ने परिवारों के पहले विश्व सम्मेलन के 30 वर्ष पूरे होने पर एक लघु वृत्तचित्र या डॉक्यूमेंट्री जारी किया है, जिसमें 3 संत पापाओं के नेतृत्व में सम्मेलन का आयोजन किया गया था तथा 2028 में होने वाले अगले आयोजन की प्रतीक्षा की जा रही है। 30 साल पहले 8 अक्टूबर 1994 को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने दुनिया भर के परिवारों को रोम में पहली बार आयोजित होने वाले परिवारों के विश्व सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया था। अब इस वर्षगांठ पर एक नई डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, जिसमें संत पापा जॉन पॉल द्वितीय, संत पापा बेनेडिक्ट 16वें और संत पापा फ्रांसिस के नेतृत्व में आयोजित 10 सम्मेलनों को फिर से दर्शाया गया है। वैटिकन मीडिया के साथ मिलकर बनाई गई 10 मिनट की एक फिल्म इन सम्मेलनों में आनंद, विश्वास और एकता के प्रोत्साहन की याद दिलाती है। लोक धर्मी परिवार और जीवन के लिए गठित परम धर्म पीठ विभाग द्वारा जारी एक बयान में, जो सम्मेलन का आयोजन करती है, विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल केविन फेरल ने संत पापाओं द्वारा गले लगाए गए परिवारों की शक्तिशाली छवियों के माध्यम से इस यात्रा का वर्णन किया, जो समाज और कलीसिया के भीतर उनके मिशन को दर्शाता है। बयान में कहा गया है कि यह डॉक्यूमेंट्री एक मूल्यवान प्रेरित उपकरण के रूप में है, जो विवाह की तैयारी, पारिवारिक धर्म शिक्षा और कई अन्य अवसरों के लिए उपयुक्त है। फिल्म के साथ एक मिनट के 10 अन्य वीडियो हैं। प्रत्येक वीडियो में पोप के मुख्य विचारों को दर्शाया गया है, जो आनंद, विश्वास और मिशन जैसे विषयों पर केंद्रित है। इन सभी वीडियो का उद्देश्य परिवारों को प्रेरित करना है, क्योंकि कलीसिया 2028 में होने वाली अगली विश्व बैठक की ओर देख रही है। सिनोडलिटी या धर्म सभा स्वरूप कलीसिया पर धर्म अध्यक्ष धर्म सभा के छठवें दिन की प्रेस ब्रीफिंग में 21 नवनियुक्त कार्डिनलों में से 3 की भागीदारी देखी गई, और यह भी पता चला कि धर्म सभा के प्रतिभागियों ने गजा में पौत्र परिवार कार्तिक पल्ली के लिए 62,000 यूरो की दान राशि जमा की है। वैटिकन संचार विभाग के प्रीफेक्ट और धर्म सभा के सूचना आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पॉल रूफिनी ने वैटिकन प्रेस कार्यालय में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जानकारी दी कि गजा में युद्ध पीड़ितों के लिए 7 अक्टूबर को धर्म सभा में कुल 62,000 यूरो एकत्र किए गए। प्रेस कार्यालय के उपनिदेशक क्रिस्टियाने मुरे ने बताया कि सम्मेलन में 3 नवनियुक्त कार्डिनल भी भाग ले रहे हैं। आइवरी कोस्ट के महाधर्म अध्यक्ष इग्नेस बेसी डॉगबो, जापान के महाधर्म अध्यक्ष तत्सुयो इसाओ की कोची और ब्राजील के महाधर्म अध्यक्ष जाइमे स्पेंगलर। डॉक्टर रूफिनी ने बताया कि दान संग्रह की जानकारी वैटिकन परोपकार विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल कॉनराड क्रेस्की ने दी। कुल 32,000 यूरो सिनर प्रतिभागियों की ओर से जमा किए गए और कुल 30,000 यूरो वैटिकन के परोपकार विभाग से। कार्डिनल ने बतलाया कि कुल 62,000 यूरो की राशि यरूशलेम में प्रेरित राजदूतावास के माध्यम से वितरित की गई, और यह गजा में पौत्र परिवार पल्ली के फादर गाब्रेल रोमानेल्ली के पास पहुंच चुका है। रूफिनी के अनुसार सभा में उपस्थित लोगों ने अर्जेंटीना के पुरोहित द्वारा भेजे गए धन्यवाद के वीडियो पर तालियां बजाकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। डॉक्टर रूफिनी ने आगे बताया कि सोमवार को कार्डिनल क्रेच ने सभा में घोषित किया कि लोक धर्मी परिवार और जीवन के लिए गठित विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय युवा सलाहकार निकाय में 20 नए सदस्यों की नियुक्ति की है, जिसकी स्थापना 2018 में धर्म सभा के बाद की गई थी। धर्म सभा के सभी प्रतिभागियों की ओर से महासचिव ने उन युवाओं को शुभकामनाएं दी जो कलीसिया की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मंगलवार की सुबह का मध्य भाग, जिसमें पॉल छठवें होल में 335 प्रतिभागी मौजूद थे, अंतिम दस्तावेज के प्रारूप के लिए आयोग के 14 सदस्यों में से 7 को चुनने के लिए समर्पित था। मतदान से पहले इसके सचिव मॉनसिनियर रिकार्डो बटोकियो ने सभी को याद दिलाया कि आयोग अंतिम दस्तावेज का भौतिक रूप से प्रारूप नहीं करता है, बल्कि कार्य परियोजना की देखरेख करता है। डॉक्टर रूफिनी ने आगे कहा, मतदान के बाद भाषा समूह की ओर से रिपोर्ट आई, जो सभा की नवीनता है। विशेष रूप से प्रतिवेदकों ने ख्रिस्त दीक्षा के महत्व और एक अधिक सिनोडल कलीसिया बनने में संबंधों और आवश्यक धर्म सभा और संबंध परक मन परिवर्तन पर प्रकाश डाला। करिश्मा और प्रेरिताय के बीच संबंध पर भी जोर दिया गया, और प्रतिभागियों ने याज के अहंकार से कैसे बचें, समर्पित जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका, सुनने की प्रेरिताय, मिशन से जुड़ी प्रेरिताय के बारे में विभेदित आत्मपरक और सांस्कृतिक एवं स्थानीय संदर्भों पर विचार किया। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।